योगीराज अवधूत स्वरूप शंकरराम महाराज के उस परंपरा को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए महायोगी राज के चरणों में अपनी वाद पुष्पांजलि, जो पद्मों की माला है, वह पद्म से ही प्रस्फुट है, अवस्पुरस पुष्कर एक क्षण है, पुष्कर तीर्थ में जो जाकर के इच्छित है ऐसा पद्म है, उस पद्म की जो माला है वह पद्म प्रसून, वह पुष्प रूप में माला रूप में अर्पित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, जो प्रसन्नता है वही प्रसाद है, कि आनंद स्वरूप ब्रह्म है। जब व्यक्ति के कर्म हृदय से होते हैं तो उस कर्म का जो आनंद होता है वो उसे प्राप्त होता है, तो वह स्वतः ही आनंदित होने लगता है, उसको ब्रह्म कर्म कहते हैं। तो ये पुराणादि हैं, वेदादि हैं, ये ब्रह्म विचार है। ब्रह्म विचार ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती सरस्वती जो उनकी तनया है, सरह ज्ञानम अस्ति अस्य इति सरस्वती, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है और वह विचार स्वरूप है, ब्रह्म विचार सार परमा। सरस्वती और विद्वान उपासक संसार रूपी सर में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। अभी अभी जो चर्चा चली हम लोगों में संस्कृत के माध्यम से, वह यही थी कि पद्म पुराण के माध्यम, पद्म पुराण ने भागवत पुराण की महिमा वर्णन किया है। तो पद्म पुराण यदि भागवत की महिमा का वर्णन करता है तो पद्म पुराण की रचना भी पहले हुई, यह उसी प्रकार से जैसे कि पहली गति यहाँ की है और बाद की गति कर्मशत की है। तो यहाँ एक मूल पद्म पुराण की कथा चल रही है, तो वहां शाखा में भागवत पुराण की कथा चल रही है, वह एक शाखा है, यह मूल है। तो मूल वृक्ष जो होता है उसके सेचन से शाखाएं भी जो है सिंचित होती रहती है। हाँ हाँ, मूल के सिंचन से शाखा पुष्ट होती है। जैसे मूल परमात्मा में मति होती है और परमात्मा को यदि हम उसमें भजन पूजन ध्यान लगाते रहते हैं तो उनके द्वारा जो संसार रूपी शाखा हमारी है, बाल बच्चे भी बढ़ते रहते हैं। इसलिए मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, इन जो शास्त्रादि हैं, संसार है, इसके मूल में ब्रह्मा जी हैं, मूल में वेद है, इन शास्त्रों के सिंचन से संसार को उर्वरक मिलते रहता है, संसार को जो है जड़ी बूटी मिला करती है, संसार को संजीवनी मिला करती है। नहीं तो संसार तो जो है वह भव है, वह भव क्या है, रोग है, और उसकी औषधि ये शास्त्र है, औषधि हरिनाम है। तो ऐसे संसार की औषधि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारा मानस प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है, इसी प्रसंग में देवव्रत भीष्म अवर पुलस्त्य जी का जो संवाद पुष्कर में चल रहा है, पुष्कर तीर्थ की महिमा के वर्णन में चल रहा है, तो वह बतला रहे हैं कि पुष्कर तीर्थ गजब का है। पुष्कर तीर्थ में जो लोग स्नान इत्यादि करते हैं, यदि वह श्याम वर्ण के हैं तो भी वो गौर वर्ण के हो जाते हैं, ये गजब की महिमा वहां की है। कुछ ब्राह्मणों ने वहाँ यज्ञ करके अपना मुख दर्शन किया, स्नान किया, तो वो शुक्ल वर्ण के हो गए, इसलिए उस तीर्थ का नाम भी शुक्ल तीर्थ है। हाँ, और उसको मुख दर्शन तीर्थ भी कहते हैं। और यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं, उनके मुख से सृष्टि के प्रारंभ में वेद निकलते हैं, तो वह समाधि में वेदों का साक्षात्कार करते हैं। वैसे तो आधुनिक परंपरा के लोग पूछते हैं, बताओ वेदों को किसने बनाया, तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने बनाया। ऐसा नहीं है, वेद व्यास जी ने वेदों के शाखाओं का विभाजन किया, क्योंकि वो महापुरुष थे, जानते थे कि कलयुग में लोगों के पास समय कम रहेगा, उम्र कम होगी, तो उसके अनुसार सब लोग चारे चार वेद नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए सबको संपूर्ण वेद न पढ़ पाए इसके लिए शाखाओं वेदों का चार विभाग किया, और वेदों के बाद चार विभाग में फिर शाखा विभाजन किया कि वेद की अमुक शाखा के अध्येता अमुक लोग रहेंगे, इसलिए संपूर्ण वेद सुरक्षित रहेगा। फिर उन वेदों को क्रिया कर्म कांडों से जोड़ा गया कि यदि वेदों से जीविका नहीं रहेगी तो कलयुग के जो जीव होंगे वह बिना स्वार्थ के कहीं प्रवृत्त नहीं होंगे, इसलिए वो वेद इसी माध्यम से सुरक्षित रहेगा। तो अभिप्राय यह है कि मूल में वेद ब्रह्मा जी, ब्राह्मण और संत, यही संसार की औषधि स्वरूप है, ट्रीटमेंट यही करते हैं। चिकित्सक जो वैद्य है आज का, वह चिकित्सा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो औषधियों को एक भौतिक द्रव्य के रूप में देखता है, जबकि हमारे यहाँ औषधियों में शक्ति स्वरूप में परमात्मा दिखा जाता है, क्योंकि औषधियों का पति चंद्रमा है और चंद्रमा समुद्र से उद्भूत है, और वहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, उनकी शक्ति समाहित है, इसलिए भगवान की शक्ति होने से ही औषधियां काम करती है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकलान रोगान सत्यम सत्यम बदाम्यहम, यह औषधि खाने का मंत्र है। आयुर्वेद के जो तज्ञ चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो इसका प्रयोग करके तब औषधि देते हैं। औषधियों के उत्पाटन के लिए मंत्र है कि हम अमुक नक्षत्र में जाएं और औषधि को ग्रहण करके लाएं, औषधि को निमंत्रण करें और औषधि की पूजा करके और प्रार्थना करके ले आए कि तुम जो है हमारे जो पेशेंट है, जो हमारे मरीज हैं, उनके लिए तुम गुणकारी बनो और अपना तेज इसमें प्रदान करो। प्रार्थना है औषधि की, यस्मै चत्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलेशा विरोहतात्। दीर्घायुष्वोखदे, हे औषधि तुम दीर्घायु प्रदान करने वाले हो, खनिता तुम्हारा खनन दीर्घायु प्राप्त कराने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तुम साक्षात भगवान के द्वारा इसी के लिए उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम हमारे जो पेशेंट है उसके लिए तुम अपनी पूरी शक्ति अर्पित करना, यह औषधि से प्रार्थना है। आजकल औषधियों में ये प्रार्थना नहीं होती, वो कहीं से उखाड़ के लाते हैं और कूट काट के दे देते हैं, इसलिए रोग भी पूरा काम नहीं करता, वैद्यों का मनोयोग भी नहीं रहता है, नहीं तो रोगानुरूप जो है तत्त्व रोग के अनुसार मंत्रों के साथ जब औषधियों का समन्वय होता था तो रोग स्वयं नष्ट हो जाते थे, इसलिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है और अंग्रेजी दवाओं में साइड इफेक्ट, क्योंकि ये मात्र भौतिक द्रव्य मानते हैं, इनके भौतिक द्रव्य मानने से ही पृथ्वी को, जो भौतिक द्रव्य मानते हैं तो पृथ्वी का दोहन चालू हो गया है, पहाड़ों को तोड़ना चालू कर दिया, पृथ्वी के नीचे से कोयला निकाल लिया, माता के गर्भ का कलेजा निकाल लिया। उपयोग करो, लेकिन यह भावना रखो कि जो इसका देव तत्व है वह कुपित न होने पाए। एक गाय जिसके स्तन में बछड़े को देख करके दूध आता है और दूसरी गाय जिसको इंजेक्शन लगा करके दूध लिया जाता है, दोनों में कितना बड़ा अंतर आएगा। एक जहां भाव प्रधान है, दूसरे जगह दबाव प्रधान है, तो जहां भी भावात्मक रूप से कार्य हो रहा है स्वयं, वहां देव तत्व है, और जहां जबरदस्ती है वो तो बलात्कार की स्थिति बनती है, दो नहीं तो मारेंगे, आतंकवाद है, शुद्ध आतंकवाद यदि कहे इसको, तो कोई उसमें मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, आतंकवाद है डर के मारे। स्वाभाविक रूप से जहां दूध की निष्पत्ति होती है और जबरदस्ती रूप से करवाया जाए, दोनों में यही अंतर है। तो प्रकृति इसीलिए कुपित है और इसीलिए मौसम परिवर्तन हो रहे हैं। पृथ्वी की प्रार्थना है, पृथ्वी सूक्त है हमारे यहाँ ऋग्वेद में, अथर्ववेद में भी पृथ्वी के जागरण करने के मंत्र हैं। और आज जब मैं पारायण कर रहा था तो उसमें मुझे मिला कि बरगद जो बट का पेड़ है और उसके साथ औदुम्बर का पेड़ है, उन औदुम्बर के पेड़ के रोपने के मंत्र हैं, और उन मंत्रों से औदुम्बर को रोपने वाला रोगी नहीं होता है, यह भी लिखा है। उसमें देवता विशेष का आवाहन है। फिर पनस जो कटहल होता है उसके रोपण का मंत्र है। तो आज 15-20 हमें ऐसे पेड़ देववृक्ष मिले जिनके आरोपण की विधि है। इसी तरह से जलाशयों के आरोपण की विधि भी बतलाई गई है। जो हम देवता के लिए जलाशय बनवाते हैं, वह जब देव भावना होता है तो उसमें कचरा नहीं डालते, क्योंकि हमारे प्रभु का स्नान का सरोवर है, इसमें से हम जल ले जा करके प्रभु को अर्पित करेंगे। जब ये भाव होता है तो देव भावना होने से हम उसे गंदा नहीं करते हैं, और जब ये भाव निकल जाता है तो उसमें कूड़ा कचरा जितना है वह सब डालना चालू हो जाता है, उसको भरने का उपक्रम कर देते हैं, प्रदूषण वहां से शुरू हो गया। क्योंकि मानसिक प्रदूषण जहां हुआ, शोषण की प्रवृत्ति, या तालाब है इसका जल लेके खेती में उपयोग कर जाओ भाई, करो लेकिन उसके अस्तित्व को बचाए रखो, अन्न खाओ लेकिन बीज को सुरक्षित रखो, और उसमें यदि परमात्मा है या भावना रहेगी तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, नहीं आपको नष्ट होने देगा, क्योंकि हम जिसकी रक्षा करते हैं वह हमारी रक्षा करता है। कपड़े को कितना बढ़िया खींचते हैं, प्रेस करते हैं, तब चमकता है तो हमारी शोभा बढ़ाता है। पानी को आराम से गर्म करते हैं, फिर स्पर्श करते हैं कि स्नान करने लायक है कि नहीं, तो हमको स्नान कराता है, शरीर की जो मल है, शरीर के जो थकान है वो पानी से मिट जाता है। और यदि वही पानी दूषित हो जाए तो हम उसको अपने शरीर पर डालेंगे। तो जो बाह्य जो प्रदूषण है वो हमारे आंतरिक प्रदूषण के चलते बाह्य प्रदूषण हो रहा है। आज पूरा विश्व जो है भौतिकवाद के चलते ग्रस्त है, यह वैश्विक समस्या बनी हुई है। तो इस समय यदि दैवी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, ऐसे मंदिरों के पास लोग आवे, सिनेमा हॉल में जाकर के जो भौतिक द्रव्य मान करके जो लोग इतस्ततः पृथ्वी का अनादर कर रहे हैं, माता पिता का अनादर कर रहे हैं, ये सब शास्त्रों की उपेक्षा के कारण ही हो रहा है। हम क्या हैं ये हमें शास्त्र बतलाता है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ शास्त्र बतलाता है। प्रवृत्ति, कहां हमारी प्रवृत्ति हो और कहां हमारी निवृत्ति हो, कहां हमें जाना चाहिए, कहां हमें नहीं जाना चाहिए, ये सब बातों का ख्याल हमें शास्त्र कराता है। और यदि शास्त्र ना हो तो मनुष्य बंदर से कम नहीं है। क्योंकि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, वानर। सीता जी बड़ी उद्विग्न हो गई कि नरबा नर पुनि संगत कैसे, नर को वानर से संगत कैसे हो गया, तो विचित्र बात है। तो वानर वही है जो शास्त्र को नहीं जानता है। तो सब तो शास्त्र जानेंगे नहीं, लेकिन महापुरुषों के सत्संग से वानर जो है नर हो जाते हैं। तो यह सत्संग की महिमा है। तो यहाँ जो भीष्म पितामह ऋषि पुलस्त से प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न का अभिप्राय खाली उनका व्यक्तिगत लाभ नहीं था। यदि व्यक्तिगत लाभ होता तो ये ग्रंथ क्यों लिखा जाता, व्यास विरचिता गणेश लिखिता, व्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा, कहा भाई समझ करके लिखना। तो गणेश जी ने इसको लिखा। मैं जब वहां से पारायण करता हूँ तो आज सुबह में मुझे गणेश जी का दर्शन हुआ वहां पर मंदिर का, वो जो है ना, तो मुझे लगा कि ये गणेश जी महाराज आज स्मृत हो गए हैं, आज कुछ विशेष होगा। आज गणेश जी का स्मरण किया तो एक व्यास जी यहाँ पहुंच गए। आते आते कथा व्यास जी पहुंचे। सब चमत्कार की बातें हैं, मेरे अंत मन में स्फुरन हुआ करता है। मैं देखता हूँ आज महाराज जी का दर्शन करने गया तो महाराज जी की समाधि लगी थी। मैं दर्शन करके निकल गया कि महाराज जी को रोकूंगा नहीं। महाराज जी का कल मुझसे एक अपराध हुआ था कि महायोगी राजम भजे संत रामम, ये मैं पद भूल करके नमामो वयम सदगुरुम संत रामम। क्योंकि हमारे से होता क्या है कि श्लोक पाठ करते करते कई चीजें जो है एक ही जैसे लगती है और वो उसमें मिल भी जाती है, स्वाभाविक रूप से होता है। तो ऐसा लगा कि कुछ जो योगी है उस योगी के लिए खाली गुरु शब्द निकला वो कम है, वो योगी राज ही होना चाहिए। क्योंकि वो समाधि जो है ना वो बड़ी ऊंची चीज है। तो जो जो अध्ययन करता है, जो व्यास है, उनकी भी अपनी समाधि की भाषा ही शास्त्र है। क्योंकि वो स्वयं अपने वश में नहीं रहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस समय में उसके इतने आवेश संवेग होते हैं कि मैं इसको क्या पिला दूं कि उसका रक्त ही दूध बन जाता है, उसी तरह से जब वक्ता होता है वह जब बोलता है तो वो सोचता है कि हमारे अंदर जो भी है हम पूर्ण रूप से दे दे। सफल वक्ता या सफल अध्यापक या सफल गुरु वही है जो शिष्य का सर्वतो भावे न कल्याण चाहता है। वहां वो किसी चीज को रोकना नहीं चाहता है, वो भाव में उससे निकल जाता है, वो स्वाभाविक वृत्ति है। बतलाया कि इस तीर्थ का नाम महाराज मुख दर्शन तीर्थ है। अग्निहोत्र आदि के फल भी सामान्य मनुष्य को इस मुख दर्शन तीर्थ में स्नान करने से हो जाता है। और यहाँ पर सरस्वती नदी है, पुष्कर में सरस्वती नदी है। सरस्वती ब्रह्म नदी है क्योंकि तो सरस्वती जो थी वो ब्रह्मा जी की पुत्री है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी। सबसे पहले ज्ञान जो है वह सरस्वती रूप में जगत में व्याप्त हो जाता है। हमको किसी वस्तु विशेष का पहले से ज्ञान होता है तब हम उस क्रिया को करने जाते हैं, पूर्व उसकी भूमिका निर्धारित हो जाती है। तो वैसे ही जो ब्रह्म तीर्थ है, सारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो ब्रह्म तीर्थ है वह है क्या, इस तत्व को जानने के लिए जो भीष्म पितामह के प्रश्न है वो पुलस्त्य ऋषि से हो रहे हैं। तो उसमें नाना प्रकार की बातों को बतलाते हैं, कहते हैं कि देखो जो सरोवर है सरस्वती है, वह सरस्वती के तट पे ऐसी महिमा है कि वहां महर्षि लोग आज भी स्वाध्याय किया करते हैं। कहा स्वाध्याय ही एक ऐसी औषधि है जो व्यक्ति को कुमार्ग पर जाने नहीं देती है। नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, वेदादि पुराणों का, शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। मनु महाराज तो कहते हैं स्वाध्याय न व्रतैर होमैर कई विद्यया क्रतु महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मी यम क्रियते तनु। स्वाध्याय के द्वारा, इज्ञा यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा और ब्रह्म यज्ञ मतलब पितरों के लिए पिंडदान, अतिथियों के लिए अन्नदान, गाय कुत्ते पक्षी वृक्ष सबकी तर्पण, सबको संतुष्ट करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसमें सब लोग तृप्त हो जाते हैं। पिपीलिका कीट पतंग का त्या बुभुक्षिता कर्मणिबद्ध बद्धा तृप्त्यर्थमन्नम हिमया प्रदत्तम तेसा मिदम ते मुदिता भवन्तु। जो पिपीलिका छोटी चींटी है, कीड़ी है, उसके लिए भी अन्नदान का विधान है। भिक्षों के लिए भी जलदान का विधान है। कहा कैसे? तो एको बटु